May 16, year 2004, my wife and Benjamin Hanna of Toronto, in the morning. Yali Madad? बात करने से पहले मैं एक चीज का सुधारा करना चाहता हूं. मोमिनों, हमारे मजहब के जितने भी रीत रस्म है वो हमारे पीरों की बनाई हुई है और उनके पीछे बड़ी सिग्निफिकेंस है. मैंने देखा कि घटपाट पीने के बाद लोग बैठ जाते हैं. घटपाट जब ये जमात पीती है तो गिनान बोला जाता है, जमात खड़ी रहती है. जब तक ये उठापन की दुआ ना होए हमें खड़ा रहना चाहिए, सिवा के कोई बीमार है, तकलीफ है, बुजुर्ग हैं. लेकिन बाकी सबको उठापन की दुआ तक खड़ा रहना चाहिए. ये घटपाट की इज्जत और उसके रिस्पेक्ट है. उसके बाद हम बैठ जाते हैं और कर्म करने की दुआ के बाद खड़े होकर तस्वीर निकालते हैं. तो ये मैं जमात को ध्यान खींचना चाहता हूं कि हमें खड़ा रहना चाहिए. अब मारा स्वामी राजा धर्मी राजा तेरे नाम सुन रे मारो मनाड़ो बांधो. मौलाना हज़रत इमाम प्रसन्न भाग पड़ रहा दिनदारो, सुबह का वक्त है. इसको हमारे पीरों ने नूर का वक्त कहा है. जो लोग जियोग्राफी जानते हैं उन्हें पता है जमीन वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है और ईस्ट में सूरज निकलता है. शाम को सूरज वेस्ट में डूब जाता है. जमीन के घूमने की वजह से वेस्ट टू ईस्ट सूरज पीछे चला जाता है. जब आधी रात होती है तो जो सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो जमीन से अलग हो जाती हैं. आधी जमीन अंधेरे में होती है, आधी जमीन सूरज के सामने होती है. आधी रात को जब सूरज ऑपोजिट साइड में होता है तो जो सूरज की अल्ट्रा वायलेट शक्ति है वो जमीन से बंद हो जाती है. अल्ट्रा वायलेट जहां जहां लाइफ है यानी झाड़ है, वनस्पति है, एग्रीकल्चर वगैरह की चीजें हैं, जानवर हैं, इंसान हैं, अल्ट्रा वायलेट एनर्जी हमको नुकसानकारक है, हार्मफुल है. अब क्या होता है कि जब ये बंद हो जाती तो कॉस्मोस यानी इस साइड के ऊपर सूरज की ऑपोजिट साइड के ऊपर आसमान से जो कि स्काई की कोई लिमिट नहीं है ऊपर से कॉस्मिक एनर्जी नीचे आती है. सूरज चमकता है ऑपोजिट साइड में, इस तरफ अंधेरा है, आधी रात हो चुकी है, तो कॉस्मिक एनर्जी लाखों करोड़ों माइलों से वो जमीन के ऊपर पहुंचती है. ये जो कॉस्मिक एनर्जी है वो इंसान के लिए, लाइफ के लिए, लाइफ किसी भी फॉर्म में हो उसके लिए बहुत अच्छी है। इसमें रूहानियत है, इसमें पीस है। इस एनर्जी के अंदर इंसान की मेंटल जो फैकल्टीज हैं उनको ताकत मिलती है। इसलिए इस्लाम में और खास तौर पे इस्माइली मजहब के अंदर रात को, आधी रात को उठ के खुदा की इबादत अगर की जाए तो उस इबादत का जल्दी से फायदा मिलता है। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह दातार फरमाते हैं कि मेरे बाप अली शाह माँ बाप ने कहा कि आधी रात को उठो, याली को याद करो तो मैं तुम्हारे गुनाह ले लूं और तुम्हें बरकतें और सवाब दूं। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दातार फरमाते हैं कि आधी रात के बाद एक फरिश्ता नीचे उतरता है, वह पुकार करता है, है कोई ऐसा इस वक्त उठ के खुदा का जिक्र करे तो मैं उसके गुनाह बख्शवा दूं। आधी रात की इबादत हमारे मजहब के अंदर बहुत पुरानी है। हमारे भगत काला रूड़ा थे, वो रात को 12 बजे से सुबह 5 बजे तक इबादत में बैठते थे। इसके पहले हमारे मजहब में यही है, सुबह 5 बजे के बाद दुआ वगैरह पढ़ के अपना रूहानी काम पूरा करते थे। जमाना बदलता गया, आदमी दुनिया के अंदर लोटपोट होता गया, कमजोर होता गया, आहिस्ता आहिस्ता कलयुग बढ़ता गया। मौलाना अली शमा बाप ने अपने बाप के जमाने में, यानी मौलाना हसन अली शाह इमाम थे, अली शाह माँ बाप पीर थे, और ये दोनों बाप बेटे 1842 में इंडिया आए। उस वक्त 5 घंटे की इबादत थी। बैतुल ख्याल इतना कॉमन नहीं था जितना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के जमाने में हुआ। अली शाह माँ बाप ने 4 घंटे बना दिए, जब खुद इमाम बने तो 3 घंटे बना दिए, यानी 2 से 5। और जब इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का जमाना आया तो उस वक्त पीर आगा शाहबुद्दीन शाह ने, यानी इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह से थोड़ा पहले, अली शाह माँ बाप के बारे में पीर आगा शाहबुद्दीन शाह ने रात के 3 बजे से 5 बजे तक 2 घंटे की इबादत बनाई। और 2 घंटे की इबादत मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह के जमाने में बहुत बरसों तक चली। बाद में देखा कि मेरे मुरीद दिन ब दिन रूहानियत में कमजोर हो रहे हैं, मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने 1 घंटा बना दिया। ये 1 घंटे की इबादत 1915-16 के बाद हुई। 1 घंटा भी आज हमको बड़ा मुश्किल लगता है। 1 घंटा हमसे पूरा नहीं होता। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने देखा तो फरमाया कि देखो, 1 घंटा तुम्हें अगर मुश्किल लगता है, 40 मिनट, 50 मिनट, कभी 100 मिनट हो जावे, लेकिन करो। जमात खाने के अंदर ये हम फर्क नहीं कर सकते, यहां तो 4 और 5 ही है, क्योंकि ये उसका दरबार है, ये उसका घर है, यहां फर्क नहीं। लेकिन हम जब घर पे उठते हैं तो घर के अंदर कभी हमारी तबीयत ऊंची नीची होती है, 1 घंटा नहीं होता, थोड़ा कम भी, मगर चार और पांच के दरमियान इबादत होनी चाहिए, और ये चार और पांच के दरमियान इबादत इसलिए होनी चाहिए कि ये नूर का वक्त है, और नूर का वक्त मैंने अभी आपको इसका खुलासा किया कि आधी रात के बाद जो कॉस्मिक एनर्जी है जब वो जमीन पे उतरती है तो हर तरफ नूर ही नूर होता है। पांच बजे के नजदीक सूरज ऐसा नजदीक आ जाता है, रोशनी नहीं होती लेकिन सूरज की एनर्जी थोड़ी दूर होती है ईस्ट में, उसका असर हमें पड़ता है। पांच बजे के बाद है, अभी भी वक्त अच्छा है लेकिन वीक हो जाता है। छह बजे के बाद तो नूर का वक्त बंद हो जाता है, और ये डिपेंड करता है सीजन के ऊपर, वेदर के ऊपर। गर्मियों के अंदर जल्दी सूरज निकलता है, सर्दियों में देर से निकलता है, लेकिन सूरज की जो रफ्तार है, सूरज की जो चलन है, उसके हिसाब से रूहानियत में ये फर्क नहीं होता। वो तो आधी रात के बाद पांच छह घंटे तक नूरानी वक्त है, फिर सर्दियां होवे कि गर्मी ना होवे। इसलिए हमारे पीरों ने इस वक्त को नूर का वक्त कहा है। नूर वेला नूर पियो, नूर के वक्त उठो और नूर पियो, न्यास गठपाट पियो, करियो मन आनंद जी। क्या नूर के वक्त उठ के नूर पियोगे तो तुम्हारे दिल के अंदर आनंद खुशी पैदा होगी। ओप वेला राखो शाह पीर सो सबंद जी, तमे जागो जागो भैया रैन बिहानिया। उठा नूर के वक्त नूर पियो, तुम्हारे दिल के अंदर खुशी आनंद पैदा होगा। हमको ये एक ऐसी चीज दी है हमारे पीरों ने, मजहब गुरु सिखाता है, पीर सिखाते हैं, मगर पीर में जोत है इमाम की। पीर और इमाम में फर्क नहीं, शरीर भले दो हों में लेकिन जो पीर है वो नबी का नूर है। पीरों ने हमको वो रास्ते बताए हैं कि जिनमें हकीकत है और बड़ी डीप फिलॉसफी है। फिर कहते हैं इस नूर के वक्त नूर पियो तो दिल के अंदर तुम्हारा आनंद पैदा हो जाए। पोप बेड़ा, पोप कहते हैं आखिरी एंड, रात का एंड है ये, पांच छह बजे का जो वक्त है ये पोप बेड़ा है। पोप बेड़ा आखिरी वक्त के अंदर उठो, मौला को याद करो और संबंध रखो अपने मौला के साथ। संबंध यानी कनेक्शन रखो। कम नसीब है वो लोग कि जो सुबह नहीं उठते, हकीकत में कम नसीब है। उनको रूहानी चीजें बख्शीशें नहीं मिलती। दीनदारों, हम लोग दुनिया में सख्त बिजी हो गए हैं, इसलिए हमें आसमान की शक्तियों के साथ कनेक्शन करने का वक्त नहीं मिलता, और समझते भी नहीं कि जिस तरह हम दुनिया के अंदर एक दूसरे के साथ संबंध ताल्लुक रखते हैं, यार है, दोस्त है, रिश्तेदार हैं, इसी तरह से हमें आसमान की मखलूकात के साथ भी ताल्लुक रखना चाहिए। आसमानों में मखलूकात यानी आबादी, उधर की मखलूकात इंसान नहीं है, स्पिरिट्स हैं, रूहानियां हैं, फरिश्ते हैं, जिन्नात हैं। जिन्नात दुनिया में भी रहते हैं, आसमानों में भी रहते हैं। जिन्नात खुदा ताला ने आग में से बनाए, फरिश्ते नूर में से बनाए, इंसान और जानवरों को मिट्टी से बनाया, और खुदा ताला ने पवन यानी कि हवा में से बैक्टीरिया बनाए। बैक्टीरिया उड़ते रहते हैं, हजारों किस्म के बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया जो हैं वो हमारे दोस्त भी हैं, दुश्मन भी हैं। जहां गंदवाड़ होता है, डर्टी होती है जहां जगह पे, जहां चीजें स्टिंक करती हैं, वहां के जो बैक्टीरिया है वो दुश्मन है इंसान के। लेकिन आप किसी बाग बगीचे में जाओ, सुबह के वक्त फूलों की खुशबू आती है, उस वक्त जो बैक्टीरिया वहां घूमते हैं वो फ्रेंडली होते हैं, दोस्त होते हैं। हम जब खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सांस लेते हैं, तो बहुत से बैक्टीरिया हमारे पेट में जाते हैं हमारी खुराक के साथ। इसमें भी दो किस्म के बैक्टीरिया है, हमारे खाने पीने के अंदर भी दुश्मन और दोस्त बैक्टीरिया हैं। हमारे पेट के अंदर आंतड़े जो हैं उनके अंदर फ्रेंडली बैक्टीरिया हजम करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, उसके अंदर से एनर्जी और खून निकालते हैं। लेकिन जब हम सड़ी हुई खुराक खाते हैं तो दुश्मन बैक्टीरिया अंदर जाते हैं, ये एक दूसरे से लड़ते हैं। इसलिए हमें वो खुराक खानी चाहिए, जैसे कि हमारे पीरों ने कहा है कि जिस खुराक में से हमें रूहानियत मिले। हमारी जो फूड है उसमें भी रूहानियत है। हमारे पीरों ने, हमारे इमामों ने हमें बहुत दफा कहा है कि गोश्त से परहेज करो, खाओ, कभी थोड़ा खा लिया। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं कि वो गोश्त के बगैर और कुछ खाते ही नहीं, वेजिटेबल उनको बुरी लगती है, गोश्त खाते हैं। आज मैं आपको जो चीजें कह रहा हूं, भले ये दुनियावी चीजें हैं, लेकिन इनके साथ ये तमाम जो मैं आपको समझा रहा हूं वो हमारी रूहानी जिंदगी के ऊपर असर करते हैं, कि जो हमें बैतुल ख्याल में काम आते हैं। मेरी सारी जिंदगी स्टडी में निकली, और मैं आपको जो कह रहा हूं मैं अपनी जिंदगी के अंदर उसमें से एक्सपीरियंस लिया है। उस मौला के रहम व करम से मैं इमामों के कदमों में बैठा हूं, इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह रेतार हमारा हाजिर इमाम, इनके कदमों में बैठा हूं, घंटों तक बातें की हैं। इसकी एनर्जी में से बहुत सी कुछ चीजें भी मिली, फरमान भी मिले। तो हम जो खुराक खाते हैं उसके अंदर दोनों किस्म के बैक्टीरिया हैं। मिसाल आपको दूं, गोश्त है, ऐसा एक बकरा ले लो, जब ये बकरे को ज़िबह करते हैं ना, तो जो ज़िबह करने वाला बकरे को पकड़ता है उसके ख्याल बकरे के माइंड पे असर करते हैं, उसके ब्रेन की वाइब्रेशन बकरे को मिलती है, बकरे में रूह है, वो फौरन समझ जाता है कि ये अभी मुझे मार डालेगा। तो उसके दिल के अंदर खौफ पैदा होता है, डर पैदा होता है। जब ये डर पैदा होता है तो उसके सारे बदन के अंदर जो खून दौड़ता है उसमें यूरिक एसिड पैदा होता है। ये यूरिक एसिड और एड्रेनियल उसके आदमी वो बकरे के दिमाग में खौफ और डर पैदा करता है, और जब वो उसको पकड़ के छुरी चलाता है तो उसका सारा जो खून है वो पॉइजनस हो जाता है। इसलिए अल्लाह ने कहा कि जब ये ज़िबह करो तो खून निकलने दो। इस्लाम ने खून को हराम कहा है। बहुत से लोग कुछ खून निकलता है तो चाट लेते हैं, ऐसा मत करो, खून को कभी मत चाटो। खून मौला ने, अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर हराम किया है। तो जो खून होता है अगर वो बाकी रह जाता है थोड़ा सा, सारा नहीं निकलता 100%, फिर वो बकरे को हम पकाते हैं और खाते हैं, वो जो खौफ डर के अंदर जो यूरिक एसिड पैदा हुआ उसके बदन के अंदर, वो थोड़ा सा हमारे पेट में जाता है। इसलिए गोश्त खाने वालों को ज्यादा बीमारियां होती हैं कंपेयर टू वेजिटेरियन के। हमारे पीरों ने भी बहुत कुछ कहा, हमारा इमाम ने भी कहा है कि तुम अपने पेट को कब्रस्तान मत बनाओ, बैतुल ख्याल के फरमानों में है। हमको इमाम ने एक और इशारा किया, देखो इमाम के कामों में बड़ी हिकमत होती है, सटलिटी है उसमें, उसमें बड़ी विजडम है, शायद हम नहीं समझ सकें लेकिन वो जो कहता है उसमें करामतें हैं। एक मिसाल दो, ये 1905 के फरमानों में मौलाना सुल्तान ने मुझसे फरमाया कि तुम बैतुल ख्याल के 5 सितारे बनाओ, लेकिन बैतुल ख्याल के सितारे में तुम गोश्त मच्छी मत खाओ। कम से कम एक वीक तक कभी हम गोश्त मच्छी न खाएं तो हमारा सिस्टम थोड़ा क्लीन हो जाता है। लेकिन हम कलयुग के आदमी हैं ना, कुछ लोग गए पाकिस्तानी गए मौला के पास, खुला हमारा मुल्क तो ऐसा है, अच्छा खाने खा लो। जब वो फरमान करता है वो और चीज है, लेकिन जब हम उसको कह के खुदा मेरे से नहीं होता, ओके ना सही है। इन दोनों कंडीशंस में फर्क है। इमाम खुद जो बोलता है वो नूर है, और हम जब जाके फेर फर्क करते हैं उसमें वो चीज नहीं रहती जो इमाम ने फरमाई थी। आजकल तो सताड़े के अंदर खाने वाले गोश्त तो खावे, जमात के अंदर जो नांदी के थाम मेहमानी के आते हैं वो गोश्त मच्छी से भरे होते हैं। अरे भाई सताड़ा है कौन मानता है, अचले नहीं, इमाम का हुक्म मानो। मौलाना अली शमाबा फरमाते थे कि मैं तुमको बोलूं कि 14 कदम के ऊपर खजाना है और तुम जाके खोदो डिग करो तो तुम्हें खजाना यानी ट्रेजर मिलेगा, लेकिन 13 फुट खोदोगे तो नहीं मिलेगा, 15 फुट खोदोगे तो नहीं मिलेगा, 14 मीन्स 14। ये इशारा है इस तरफ कि अगर मौला ने फरमान किया है तो उस फरमान के ऊपर अमल होना चाहिए। हमारी इस खुराक के अंदर दूध और दही, इसमें पर्टिकुलरली दही हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया को ताकत देता है, क्योंकि दही के अंदर फ्रेंडली बैक्टीरिया है, और दही खाने से हमारे आंतड़ों के अंदर जो हमारे दुश्मन बैक्टीरिया है उनको मार डालता है दही के बैक्टीरिया। इसलिए हमारे पीरों के गिनानों हमारे इमामों के फरमानों के अंदर खुराक के लिए जो फरमान है उसमें एक ये भी है, दही हर रोज खाओ और दूध पियो लेकिन गर्म करके बॉयल करके पियो। ये दोनों चीजें ब्रेन के लिए अच्छी हैं, पेट के लिए अच्छी हैं, ब्लड के लिए अच्छी हैं, हमारी तंदुरुस्ती के लिए अच्छी हैं। मैंने एक बहुत बरसों के पहले एक मैंने एक वाइज की थी सीनियर्स को, हेल्थ इन रिलीजन, जो हेल्थ है वो हमारे रिलीजन का एक हिस्सा है। अच्छी हेल्थ रूहानियत के लिए बहुत जरूरी है, बैतुल ख्याल की इबादत के लिए खास तौर पे हमारी हेल्थ की बहुत जरूरत है। अगर हेल्थ बिगड़ी हुई है, फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं, तो बैतुल ख्याल में हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते। इसके लिए ऋषि मुनि सूफी वगैरह इन्होंने खाने पीने के ऊपर बड़ी कायदे कानून बनाए हुए हैं, गोश्त मच्छी ऐसी चीजें जो हैं उनसे परहेज करते हैं, वेजिटेबल है, दूध दही है। आज की दुनिया में ये कोका कोला और ऐसी बहुत सी चीजें पीने की निकली हुई हैं, पानी पियो। एक या दो कप चाय पियो, कोई हरकत नहीं, लेकिन जहां तक बन सके पानी ज्यादा पियो। पानी पीने से हमारा सिस्टम जो है क्लीन होता है। तो ये चीजें हमें बैतुल ख्याल में काम आती हैं। अच्छी सेहत वाला आदमी जो है वो जल्दी से अपना ध्यान लगा सकता है। मैं एक चीज फील कर रहा हूं, और भी मुसाफरियां करता रहता हूं, नॉर्थ अमेरिका के अंदर जनरली तो है ही, लेकिन मेरी जमात के अंदर भी मेंटल कंडीशंस बिगड़ रही हैं। मैं ये फील कर रहा हूं कि गए 20 बरस में, मैं नॉर्थ अमेरिका में रहता हूं, 82 में मैं रहने के लिए यहां आया, और मेरी मुसाफरियों के दरमियान जमातों की मुलाकातों के अंदर मैं फील करता हूं कि डे बाई डे डिप्रेशन बढ़ रही है। हमारी जमात के अंदर डिप्रेशन के केसेस बढ़ रहे हैं। ये जाहिर करता है कि हमारे ईमान में खलल पैदा हो रहा है। ये जाहिर करता है कि हमारी रूहानी शक्तियां घट रही हैं। ये जाहिर करता है कि रूहानियत के अंदर हम पीछे हट रहे हैं और मटेरियलिज्म हमारे दिमाग का कब्जा ले रही है। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन में यह चीज होती है, मेरा कोई नहीं। जो अपने होते हैं उनको भी वो हेट करता है। डिप्रेशन वाला जो आदमी है वो सिर्फ खुद को ही अपना दोस्त समझता है, किसी को अपना दोस्त नहीं समझता। और डिप्रेशन की वजह यह है कि उसकी रूहानी साइड वीक हो गई है। वो आदमी के जो खुदा के ऊपर यकीन रखता है कि मेरा मौला बैठा है, उसको कभी डिप्रेशन नहीं होगी। डिप्रेशन और ईमान के साथ ताल्लुक है। वीक माइंड होने की वजह से उसमें सहन शक्ति घट गई, टॉलरेंस घट गई, पेशेंस घट गई। तो क्या होगा? वो अपनी इबादत वगैरह, तस्बीहां, ये चीजें छोड़ देगा, वो और भी बिगड़ जाएगा। रूहानी साइड उसकी वीक हो जाने से दिन ब दिन उसकी रूहानी साइड वीक से वीकर हो रही है। तो डिप्रेशन जो है वो ये है कि हमारी रिलीजियस साइड वीक है। और डिप्रेशन का एक और कारण भी है, और वो ये है हमारा फैमिली स्ट्रक्चर। अगर हमारी फैमिली के अंदर झगड़े हैं तो वो झगड़े बहुत बरसों तक रहने से कोई ना कोई फैमिली में से डिप्रेस्ड हो जाएगा। ये एंटी स्पिरिचुअल साइड है इंसान की। इसलिए हमको जो बैतुल ख्याल दिया गया है, ये हमारे ऊपर रहम किया गया है कि हमको बैतुल ख्याल दिया गया है। सुबह उठ के जब हम 4 बजे बैठ के मौला के साथ प्लग मिलाते हैं उसकी एनर्जी लेने के लिए, तो इंसान को रूहानी एनर्जी मिलती है। ये रूहानी एनर्जी हमारी हेल्थ के ऊपर अच्छा असर करती है। सुबह की इबादत करने वाले जो लोग हैं, जनरल हेल्थ उनकी दूसरों से अच्छी होती है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो हमारे सारे सिस्टम का मालिक है। अपर ब्रेन जो है, जिसमें कॉन्शियस रहती है फ्रंट में, वो रूहानी साइड का है। हमारा जो लोअर ब्रेन है वो हमारी फिजिकल साइड का ध्यान रखता है, नर्वस सिस्टम उसमें से निकलता है, और ये तमाम सारे बदन के अंदर नर्वस सिस्टम फैला हुआ है। और ये तमाम चीजें, ऐसा स्ट्रक्चर हमारे पीरों ने गिनाने में फरमाया। इसमें एक किताब है सदरदीन माँ बाप की, गर्भावली, 40 पेज की किताब है। लेकिन हमारा जितना भी शास्त्र है उसमें सबसे मोस्ट डिफिकल्ट चीज ये किताब है, गर्भावली, 40 पेज है। लेकिन इसके अंदर आसमान जमीन का इल्म छुपाया है पीरों ने, खासतौर पर सदरदीन ने। हमारे अंदर के सिस्टम का भी जिक्र किया है। हमारी रूहानी जो साइड है वो हमारी सारी जिंदगी के ऊपर असर करती है। बैतुल ख्याल हमारे लिए बहुत जरूरी है। दुनिया की जिंदगी में खुशी और आराम करने के लिए बैतुल ख्याल बड़ी मदद करता है। दुख तो जिंदगी का भाग है, प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी का भाग है। मैं बहुत दफा वाजे में कहा करता हूं कि हमारी लाइफ में 99% प्रॉब्लम्स है, 1% सुख का है, लेकिन वो सुख ऐसा मजबूत है कि उसको स्ट्रेच करो रबड़ की तरह तो 99 दुख उसके नीचे छुप जाएंगे। हमारा जो सिस्टम है फिजिकल सिस्टम, हमको पीरों ने बताया, इसलिए बताया कि ये फिजिकल सिस्टम हमारी रूहानियत के साथ लगा हुआ है। जब आखिरी सांस लेंगे तो जो रूहानियत है हमारी वो हमारे फिजिकल सुख को साथ लेके उड़ जाएगी। इसलिए वो आदमी का जो इबादत करता है मौत के वक्त वो आराम और राहत में जाता है, उसे कोई दुख नहीं होता, बल्कि खुशी होती है कि दुनिया के दुख में से आजाद हुआ। देखो दीनदारो, जब हमारी रूह निकलती है, अब मैं आपको मौत का जिक्र इसलिए करता हूं कि बैतुल ख्याल के साथ इबादत के साथ ये सिस्टम लगा हुआ है। एक दिन तो मरना है, काफिर भी मरेगा, मोमन भी मरेगा, बच्चा भी मरेगा, जवान भी मरेगा, बूढ़ा भी मरेगा, औरत भी मरेगी, इधर कोई रहने वाला नहीं है। जब आखिरी वक्त आता है तो सारे बदन के अंदर जो नर्वस सिस्टम है उसमें ऐसी एक किस्म की हरकत पैदा होती है कि आदमी को पता लग जाता है कि मेरा आखिरी वक्त आ गया। पहला काम क्या होता है मौत के वक्त के? मुंह बंद हो जाता है। जब इंसान की मौत आती है तो जीभ लड़िए ताड़ो दीदो, जबान बंद हो जाती, इसलिए कि जो कुछ अंदर हो चाहे वो कह नहीं सकता। जबान बंद होने से सबसे पहले जो आत्मा है स्पिरिट वो निकल जाती। स्पिरिट जो है वो नूर है। अब रहा जीव, जिसको हम इंग्लिश में लाइफ फोर्स कहते हैं, और हमारे ज्ञानों में पीरों ने उसको जीव कहा है। जीव हमारी लाइफ की एनर्जी है। दुख सुख जीव को है, आत्मा को नहीं, क्योंकि वो नूर है, पाक है। सजा जजा जो है वो जीव को मिलती है, रिवॉर्ड मिलता है जीव को मिलता है, पनिशमेंट मिलती है वो जीव को मिलती है। अभी जीव, आत्मा तो निकल गई, वो राजा है, चला गया, जीव अंदर फंसा है, उसका हिसाब होता है। चूंकि मुंह बंद होता है आदमी बेहोश जैसा हो जाता है, बोल नहीं सकता, दूसरों को पता नहीं लगता, अंदर अंदर उसका हिसाब चलता है। मोमन होता है 10-20 सेकंड में उसका हिसाब हो गया, ठप्पा मारा वो पास। लेकिन ऐसे भी हैं कि जिनका हिसाब 2-4 घंटे चलता है, 2-4 दिन चलता है, 2-4 महीने चलता है, 2-4 बरस चलता है। गुनहगार लोगों को कब्र के अंदर जीव वापस जाता है या तो अंदर ही बैठा रहता है। और जब हकीकत में मौत जो होती है ना, जो आला दर्जे के इंसान है उनकी जो जीव है वो आंखों से निकलता है। बात करते करते आंख बंद हो गई, मामला खत्म। इससे लोअर लेवल के जो लोग होते हैं उनका जीव नाक में से निकलता है, इससे जो लोअर हो गए उनका जीव मुंह से निकलता है, इससे नीचा हो गए तो कानों से निकलता है, और नीचे हो गए तो हमारी पाखाना और पेशाब की जगह से जीव निकलता है। ये वो लोग हैं कि जो जलील हैं, गिरे हुए हैं, पनिशेबल हैं, कुफ्र करने वाले, दूसरों को सताने वाले, खुदा ताला के हुक्म से उनका जीव निकलता है बहुत दफा। वो लोग के जो गुस्ल कमेटी में हैं, रसूल पाक ने मना किया है कि मरहूम का कोई भी ऐब कभी मत बोलना, और इसलिए कहा यह भी गया है कि मरहूम का नेकेडनेस नहीं देखो। दो आदमी मरहूम के ऊपर चादर लेके खड़े रहते हैं और नहलाने वाला अंदर हाथ डाल के उसको नहलाता है, साफ करता है। मरहूम को कभी नेकेड नई हालत में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बहुत दफा ऐसे ऐब होते हैं। मौत के वक्त पेट में से गंद निकल जाता है, पेशाब निकल जाता है, कानों में से खून निकल आता है। ये लोएस्ट जो तीन कंडीशंस हैं, ये रूहानियत के खिलाफ है, ऑपोजिट है। जैसा मैंने आपको कहा कि जो मोमन होते हैं उनका तो पता भी नहीं लगता, मक्खन में से बाल खींच लिया इस तरह से। रसूल पाक फरमाते हैं, और ये चीज अल्लाह ताला ने कुरान में भी कही है, कि जो गुनहगार हैं उनको मौत के वक्त ये सख्ती मिलेगी कि कांटे वाले झाड़ को, जैसे कि कीकर है, रेशम, रसूल के फरमान है ये, रेशम का कपड़ा उसके ऊपर डाल के उसको खींचो तो वो तार तार हो जाएगा। इस तरह से गुनहगार की जो मौत है वो बड़ी कठिन और सख्त होती है। अल्लाह कहता है कुरान में, गुनहगारों के पास जो फरिश्ते जाएंगे मौत के, वो भयानक होंगे, ड्रेडफुल होंगे। लेकिन जो मेरे मोमन हैं, अल्लाह कहता है, उनके पास खूबसूरत फरिश्ते जाएंगे कि वो उनको देख के राजी होगा और उनके साथ चलने के लिए तैयार होगा। तो हमारी जो दुनिया की जिंदगी है मोमिनों, वो हमारी रूहानी जिंदगी के साथ पक्की तरह से बंधी हुई है। हम दुनियादारी के अंदर पढ़ के जब वो कनेक्शन वीक कर देते हैं तो बहुत से दुखों में पड़ते हैं। दुख कहां फील होता है मालूम है? सेंस में। दुख की फीलिंग सेंस में है। अगर हमारी सेंसेस रूहानी हैं और उसका जो एब्जॉर्प्शन पावर है, जैसे कि शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं, तो हमें तो दुख लगेगा भी नहीं। हज़रत इमाम कहते हैं तुम्हें दुख आएंगे लेकिन तुम दुखी नहीं बनोगे। यह है कि रूहानी आदमी के जो शॉक एब्जॉर्बर्स हैं, टॉलरेंस है, पेशेंस है, उसको दुखी नहीं करते। आओ हमारा सामी राजा, ए मेरे मौला तू आ, कि तेरे नाम से मेरा दिल बंधा जाए। और ये चीज जो है हमें बहुत जरूरी है, जैसा कि अभी मैंने आपको कहा, अपने खाना खुराक, अपने कपड़े वगैरह, अपना बिहेवियर, अपनी सोच। वो लोग के जो जिनके अंदर एक किस्म का ईगो होता है, मेरे जैसा कोई नहीं, मैं, उनको रूहानियत में तकलीफ होती है। रूहानी आदमी हम्बल होता है, रूहानी आदमी जो है काइंड होता है, टॉलरेंट होता है, दुख में उसकी पेशेंस होती है, वो खुदा से शिकायत नहीं करता। कभी कभी कोई बुढ़ी अम्मा मिल जाती है, मिशनरी बापा आऊं करो एड़ो गुनो कहीं आईया के मौला मुके एड़ो दुख दिए तो इसलिए तू मुआफ, और मौला ब्लेम में आ गया। नहीं मोमिनो, मौला कभी दुख नहीं देता, हमारे ही अमाल से दुख होते हैं। अगर हम अपने अमाल ठीक करें, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि हमारे पीरों ने, हमारे इमामों ने हमारे अमाल के लिए बहुत कुछ कहा है, सहन करना। गए कल रात को रसूल अकरम की में जन्म खुशहाली मनाई गई। हमारी काउंसिल ने बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छा प्रोग्राम गया, मैं खुश हुआ, बहुत अच्छी तरह से हुआ। रसूल अकरम की हम ये जो मौलिदी मनाते हैं, इसमें अल्लाह कहता है कि नबी की लाइफ में तुम देखो, उसमें से बहुत सी चीजें सीखने जैसी हैं। रसूल अकरम के अंदर कुल नबियों का सरदार है, जमीन आसमान नबी के नूर में से बने, वो क्रिएटर है, उसमें हर तरह की शक्ति है। तमाम फरिश्तों का सरदार हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी के पास आके सलाम किया करते थे, वही लाते थे हजरत जिब्रील। जिब्रील अलैहिस्सलाम का नबी के हुजूर में आना, ये नबी की बड़ाई है। और जब नबी को मेराज हुई तो हजरत जिब्रील साथ थे, एक खास मकाम के ऊपर आके जिब्रील अलैहिस्सलाम अटक गए, कहते या नबी इसके आगे मेरी ताकत नहीं जाने की, आप अकेले जाओ। तो नबी अकेले गए। रसूल अकरम का दर्जा बताता, अल्लाह कहता है कि नबी के जीवन में से तुम सीखो। रसूल अकरम नबी बने, ये एक बड़ी कॉमन हकीकत है, बहुत सों को पता होगा, बहुत सों को नहीं पता होगा। नबी अलैहिस्सलाम मक्का में रहते थे और जो मक्का था 90% यहूदियों से भरा हुआ था, मदीना और मक्का दोनों। इनके अंदर क्रिश्चियन जो थे वो बहुत थोड़े थे और मुशरिक भी थे। तो रसूल अकरम ने जब अपनी नबूवत जाहिर की तो यहूदी भी बिगड़ गए, क्रिश्चियन भी बिगड़ गए, और ये जो मुशरिकीन थे मूर्ति पूजक ये भी बिगड़ गए, सब दुश्मन हो गए। लेकिन नबी करीम अपने मिशन को चलाते रहे। हुजूर का सुबह चलना ऐसा था कि एक रास्ते से जाते थे, दूसरे रास्ते से घूम के वापस आते थे। जिस रास्ते से जाते थे उस रास्ते से वापस नहीं आते थे, ऐसा ही राउंड मारते थे। तो शहर में से निकलते थे, एक दिन नबी करीम आ रहे हैं तो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एक मकान पे एक यहूदी औरत अपने घर का गार्बेज लेके कचरा झाड़ू किया, वो आके फेंकना चाहती थी तो देखा कि मोहम्मद आ रहा है, ठहर गई। इतनी हेटरेड थी इस औरत के दिल में मोहम्मद के लिए। जब रसूल अकरम उसके छत के नीचे ऐसा पसार हुए तो ऊपर से वो कचरा फेंक दिया, नबी करीम के ऊपर कचरा गिरा। आप ठहरे नहीं, ऊपर भी नहीं देखा, ऐसा ऐसा झटक के चलते रहे। दूसरे दिन वो औरत इंतजार करती रही, नबियों का सरदार फिर इधर से निकला, ऊपर से कचरा फेंक दिया। अब ये बात रोज की हो गई, ना नबी वो साइड बदलावे ना वो ठहरे। नबी जानबूझ के इधर से निकलते थे ये जाहिर करने के लिए कि मेरी टॉलरेंस कितनी है। कई दिन हो गए चलता रहा, एक दिन नबी करीम इधर से पास हुए तो ऊपर से कचरा नहीं गिरा, हुजूर ठहर गए। जब ही ठहर गए तो ये इसके नीचे जो दुकान थी और वो सामने वाले की दुकान, ये दोनों रोज ये तमाशा देखते थे, ये भी यहूदी थे। जब ही ऊपर से कचरा नहीं आया और नबी ठहर गए तो ये दुकानदार कहता है मोहम्मद वो आज बीमार है। ऐसा नबी कहते हैं मैं उसको देखना चाहता हूं। तो उसको बड़ा ताज्जुब हुआ कि उसको कचरा फेंकती रही। ये कहते हैं अरब सिविलाइजेशन कल्चर के अंदर बीमार को देखना बीमार से मोहब्बत जाहिर करने का तरीका है, इसलिए बीमार के पास जाना अरब कल्चर में बहुत जरूरी है। तो बड़ा ताज्जुब किया उसने, चुप रहा, हैरान हो गया। नबी कहते हैं उसको पूछ सकते हो कि मैं आऊं तुम्हें मिलने के लिए, ऊपर भागा। कहते हैं वो भाई वो कचरा फेंकती थी उसके ऊपर, वो नीचे खड़ा है, तेरे बीमार पुरसी करना चाहता है। घबरा गई, आंखों में आंसू आ गए। मैं उसके साथ ये सलूक किया और वो मुझको देखने आवे बीमारी के अंदर, मना नहीं कर सके। कहती अच्छा, रसूल अकरम ऊपर गए, कुछ नहीं कहा कि तू मेरे ऊपर कचरा फेंकती रही, जिक्र ही नहीं किया। हुजूर कहते हैं मुझे पता लगा तुम बीमार हो, मैं तुम्हें बीमारी में पूछने आया हूं और तेरे लिए दुआ करता हूं। उस औरत के ऐसा हुआ कि जैसे वो आसमान पहुंच गई है, झुक के नीचे पहुंची, मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों में सर रख दिया और खूब रोई, मोहम्मद मेरे को माफ करो, तुम ऐसे हो मुझे पता नहीं था, मैं मुसलमान होती हूँ, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन मुहम्मदन रसूलुल्लाह। नबी खुश हो गए। नबी की टॉलरेंस ने एक काफर को मोमन बना दिया। अल्लाह कहता है कि उसके लाइफ में से तुम सीखो। ऐसी तो कितनी ही बातें हैं रसूल पाक की कि हुजूर में पेशेंस बहुत थी, टॉलरेंस, बहुत टॉलरेंट थे, काइंड थे, रहमतें करते थे। एक लड़ाई हो रही थी, काफर लोग हार गए, तो उस जमाने की औरतों को भी गुलाम बनाया जाता था। नबी करीम कुर्सी पर बैठे हैं, इर्द गिर्द आपके बॉडीगार्ड खड़े हैं, लड़ाई खत्म हो चुकी है, लोगों को कैद किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, नबी सब देख रहे हैं और थोड़ी थोड़ी देर के बाद जरूरी ऑर्डर करते हैं। हुजूर ने देखा कि एक जवान औरत इधर से उधर, उधर से इधर, हक्की बक्की, बाल बिखरे हैं, पछेड़ी जमीन पे घिसट रही है। नबी ने किसी को कहा कि ये औरत को देखो, क्या है इसको, इधर से उधर उधर भाग रही। कोई सिपाही ऑफिसर गया होगा, उसको पकड़ा, कहती है मेरा बच्चा गुम हो गया। या नबी, उसका बच्चा गुम हो गया, जाओ दो चार आदमी जाओ उसका बच्चा ढूंढ दो। बच्चा मिल गया, छोड़ा नहीं उसको, ले किया कि या नबी इसका बच्चा मिल गया है, नजदीक आए, घुटनों के ऊपर बैठ के शुक्राना किया। कहती है मोहम्मद मेरा बच्चा मिल गया, मैं तेरा शुक्राना अदा करती हूँ। फरमाया नहीं, शुक्र खुदा कर करो। अब नबी कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पैगाम मैसेज देना चाहते हैं। हुजूर फरमाते हैं हम तेरे बच्चे को कत्ल करना चाहते हैं। ओ, एक माँ ये सुन सके, रोने लगी, ऐ मोहम्मद मुझे मार डाल, मेरा बच्चा दे। नबी करीम उन पर रिक्कत तारी हो गई है। रिक्कत का मतलब यह है कि आप इमोशनल बन गए, आंखों से आंसू निकल आए। नहीं, हम तेरे बच्चे को नहीं मारेंगे। जो बॉडीगार्ड्स थे उनको देख के फरमाते हैं देखा तुमने, कोई माँ अपने बच्चे को मरवाना चाहती, देखना चाहती, कभी नहीं। तो वो परवरदिगार जो है ना, वो अपने बंदों को दुखी नहीं देखना चाहता। लेसन देने के लिए आपने हुजूर ने ये कहा कि खुदा नहीं चाहता कि उसके बंदे आग में डाले जाएं। यहां आग से मुराद दुख है, वो आग है। पीर कहते हैं कि जो दोजख है, दोजख घट अंदर कुआं अगंदा, चिंता अगन खौफ वरीज, ये दोजख की आग है, ये दोजख की आग है। हमारी जिंदगी के अंदर इस किस्म के बहुत से वाकयात हैं दीनदारों के, जो हमें जलाते हैं। लकड़ी की के कोयले की आग और चीज है, लेकिन जो अंदर का जलापा है वो आग इस जाहिर की आग से ज्यादा दुखी है, दुख देने वाली है। मगर ये किसके लिए? जिसके पास रूहानियत नहीं है। अपनी जिंदगी को इस दुनिया के अंदर जन्नत में डालो। अल्लाह कहता है मैं अपने बंदों को दो जन्नतें दूंगा, एक यहां दूंगा एक वहां दूंगा। तो यहां की जन्नत क्या है? दिल का सुख, मन का आनंद, कोई व्याधि नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई खौफ नहीं, हाय मेरा क्या होगा, ऐसी चीज है ही नहीं उसके लिए। ये इबादत का रास्ता है मोमिनों, ये जो हमें दुनिया के अंदर भी जन्नत देता है, आखिरत में भी। दुख नबियों को भी आए, इमामों को भी आए, कोई नबी, कोई पीर, कोई इमाम ने सुख की जिंदगी नहीं गुजारी। इसी तरह से जो मोमन हैं, मोमनों को भी दुख मिलते हैं। आखिर वह इंसान है, भूल कर लेते हैं, छोटी सी सजा मिल जाती है, उनको खुदा ताला हल्की सी सजा देके छोड़ देता है। सजा तो मिलती है, लेकिन मोमन और काफर एक ही अमल करे, दोनों की सजा में फर्क है। मोमन को छोटा सा दुख दे के माफ कर देता है और हर जगह उसकी मदद करता है। काफर जो है या जालिम है, उसको सजा मिलती है। और सजा के लाखों तरीके हैं। अपनी जिंदगी को, दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को सुखी बनाने के लिए, और ये दुनिया की जो जिंदगी सुख की जिंदगी है वो सैंपल है मरने के बाद की जिंदगी के सुख का। यहां सुख की जिंदगी गुजारो, और वो सुख की जिंदगी रूहानी जिंदगी है, उसको याद करो, सुबह शाम याद करो। याद करने से कनेक्शन बनता है, संबंध होता है, और जब ये संबंध पैदा होता है तो वो दोस्त हमको हर जगह मदद करता है, हर जगह मदद करता है, दुखों से बचा लेता है। भूल कर लेते हैं तो छोटा सा थप्पड़ मार के छोड़ देता है, माफ कर देता है। अपनी रूहानी जिंदगी को मजबूत करो, इबादत करो, सारा दिन याद करो। मौला ने हमको एक टॉनिक दी है, पता है लोग टॉनिक खाते हैं, मल्टीपल विटामिन खाते हैं एनर्जी के लिए, मौला ने एक टॉनिक दी है और बहुत दफा कहा है सारा दिन या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह की तस्बीह निकालो, या अली या अली या अली करो, या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद करो। ये तीन तस्बीहें, तीनों निकालो, दो निकालो, एक निकालो। लेकिन मौला ये कहता है कि सारा दिन एयर कंडीशन चला करो। एयर कंडीशन, जब गर्मी होती है, गर्मी का मतलब मेरा दुख है, और उसमें ये एयर कंडीशन ये है कि दुख हम लगे नहीं। मौला को याद करो, फस्कुरुनी अज़कुरकुम। अल्लाह कुरान में कहता है जो मुझे याद करते हैं मैं उनको याद करता हूं, और जब वो याद हमें करता है तो दुखों की बात किधर रही। 24 घंटे उसके साथ प्लग लगा के एनर्जी खींचते रहो, और 24 घंटे जब हम उसकी एनर्जी के साथ लगेंगे तो हमारे अंदर बुराइयां निकलती जाएंगी और जो भलाइयां हैं वो आती जाएंगी। गुस्सा न करो, मौला ने मना किया है। नॉर्मल गुस्सा बच्चों को सुधारने के लिए और बात है, या हम अपने मामलात में लेन देन के अंदर हमको वो चीज ना पसंद होती तो हम नॉर्मल गुस्सा करते हैं, भाई ये बात बराबर नहीं है, मुझे तेरी बिल्कुल ये बात पसंद नहीं। ये गुस्सा है ना, ये गुस्सा नहीं, हमको क्रोध के लिए मौला ने मना किया हमारे पीरों ने, क्रोध ना करो। क्रोध क्या है कि गुस्से के अंदर दूसरे का नुकसान करना, गुस्से के अंदर उसकी बेइज्जती करना, गाली निकालना, मार धाड़ करना, या उसके पीछे उसकी कोई चीज हो उसका नुकसान करना, इसको हमारे पीरों ने क्रोध कहा है। और जिस घट में क्रोध आया उस घट में नूर कभी नहीं आएगा। क्रोध ना करो, रिटेलिएट ना करो। किसी ने अपमान किया है, रसूल अकरम का कितना अपमान हुआ, एक लफ्ज नहीं कहा उस औरत को, किसी ने अपमान किया, गाली दी है, छोड़ तो मौला के ऊपर। रिटेलिएट ना करो, बदला मत लो, क्योंकि जो बदला है ये हमारी ताकत नहीं, बदला खुदा लेता है। लेकिन जब हम किसी से बदला लेते हैं तो खुदा दूसरे के पक्ष में चला जाता है, हमारे विरुद्ध में आता है। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दातार फरमाया, तुम जालिम बनो इससे अच्छा है कि कोई तुम्हारे ऊपर जुल्म करे। मजलूम बनना अच्छा है मौला कहते हैं जालिम बनने से। बैतुल ख्याल के फरमानों है ये चीज, तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म करने में वो सहन कर लो, लेकिन तुम किसी पर जुल्म नहीं करना। तो ये जो हमारे एथिक्स हैं, हमारे जो आमाल हैं, हमारे जो विचार हैं, वो रूहानी और नूरानी होते हैं। इससे हमारे दिल को जो खुशियां मिलती हैं उन खुशियों का कोई अंदाजा नहीं कर सकता। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके सब काम ऑपोजिट साइड में चले जाएंगे, जो बुरे काम होंगे, नेक काम आपकी जिंदगी में बढ़ते जाएंगे। और क्या होगा, आपके हर काम में मौला की इलाही मदद मिलेगी, पैसे में, तंदुरुस्ती में, इज्जत आबरू में, हर जगह वो खड़ा है, सुख शांति से जीवन गुजरता है। आप मुंह खोलने की जरूरत नहीं, आपकी हाजतों को वो पूरा करता रहेगा, आपकी जरूरतों को पूरा करता रहेगा। और मोमन बहुत तलब नहीं करता, दिन रात यही मांगना कि मेरा काम मुझे बरकत दे। क्या बरकत दे, लाखों शिलिंग हो जावे, रुपए हो जावे, कि डॉलर हो जावे, ये बरकत नहीं है। बरकत का मतलब सुख है, बरकत का मतलब संतोष है, जिसको हम इंग्लिश के अंदर हम ये कहते हैं कि आदमी कंटेंटेड हो गया, भूख लगी है, अब इस भूख के अंदर दो रोटियां मिले तो भी आमीन, आधी मिले तो भी आमीन। शिकायत मत करो, कंप्लेंट मत करो, वो जो कुछ कहता है करता है हमारे लिए अच्छा है, आमीन या हर हालत में, आमीन हर हालत में शुक्रगुजारी करना। तो इस तरह हमारी रूहानी साइड बढ़ती है। और इस रूहानी साइड में कि जिसके अंदर हमारी इबादत बंदगी बढ़ती रहती है, आंख बंद किया जन्नत में पहुंच गए, आंख बंद की सुख की लहरों में आ गए, दुनिया के दुख महसूस नहीं होते। ए मौला मेरे दिल में हमेशा अपनी गांठ बंधी रहने दे, मेरे दिल को आबाद करो। और ऐसे मौला के ऊपर हमारी जान कुर्बान है। फिर हसन कबीर दिन का एक पंजाबी गिनान है, मैं वारी वारी सतगुर तो बलिहारी, मैं अपने सतगुर के ऊपर अपनी जान कुर्बान करूं, अमला वाले लंग लंग जांदे मैं रह गई अब गुणहारी। सॉरी, मैं वारी वारी सतगुर तो उसमें एक पाठ है, एक एक डाली ते तीन फल लग दे। एक दरख्त है, दरख्त जमात है, तो इसके अंदर तीन किस्म की डालियां ब्रांचेस हैं, और एक एक डाली पे पीर हसन कबीर दीन कहते हैं कि तीन फल लगते हैं। एक एक डाली ते तीन फल लग दे, जायफल लौंग सुपारी महवारी वारी सतगुर तो बलिहारी। जमात में तीन किस्म के मोमन हैं। एक ऐसे हैं कि जो जायफल की तरह है, एक ऐसे हैं कि लौंग की तरह है, लौंग यानी लविंग, एक ऐसे हैं सुपारी की तरह है। तो फिर कहते हैं कि जमात के दरख्त में तीन किस्म के फल हैं। लौंग ते जड़े शाहजी ने चुन ले, जो लौंग हैं वो तो मौला ने ले लिए, ये आला किस्म के मोमन हैं। जायफल ले गया व्यापारी में वारी वारी सतगुर तो बलिहारी। बाकी जायफल जो था वो व्यापारी ले गए। अभी लौंग का मैं सिफत बयान करूं। लविंग जो है ना क्लव, ये मोस्टली जंजिबार में इंडोनेशिया में होते हैं, इसमें खुदा ने बड़े गुण रखे हैं। लौंग कभी सड़ता नहीं, इसको कभी कीड़ा लगता नहीं, बल्कि किसी चीज को बचाना होवे तो एक मुट्ठी भर लौंग उसमें डाल दो तो उस कपड़े में या इस जगह पे कोई जर्म कीड़ा नहीं लगेगा। ये आला किस्म के जो मोमन हैं कि उनके अंदर कोई खराबी नहीं, बल्कि वो दूसरों को भी बचाते हैं लविंग की तरह। तो लौंग तो शाहजी ले गए। अब वो मोमन हैं कि जो मौला को एक डॉलर दे के कहते हैं $1,25,000 लिख, तो ये व्यापारी लोग हैं, ये असल कबीर दिन कहते हैं। मोमन अमल करता है, मांगता नहीं, व्यापारी मांगता है। जब मौला सुल्तान मोहम्मद शाह 8 बरस की उम्र में इमाम बने तो दुनिया भर ने, जो माता सलामत थी माँ उनकी, वो इनकी, क्योंकि बाप नहीं था तो माँ उनकी गार्डियन थी। जमात में इमाम बनने के बाद जमात में से अमरदार वगैरह मौला के पास जाते थे, तो हमारा ये सिस्टम है, हम जब मौला के पास जावें तो हम कुछ नजराना रखते हैं, मेहमानी रखते हैं। तो जो आदमी मौला को मिलने के लिए जावे तो पहले माँ बैठी हुए हैं, अंदर जाने नहीं देवे। तो ईरानी सिलसिले के हिसाब से माता सलामत ईरान की प्रिंसेस थी, फतेह अली काचार शहनशाह की बेटी की बेटी थी, तो नजराना रखते थे। उस जमाने में हिंदुस्तान में चांदी का रुपया था, चांदी से चांदी का आधा रुपया था 58, इसका पाव रुपया था 4 आने 54, इससे भी आधा था 2 आने, ये चांदी के सिक्के थे। तो लोग माता के सामने वो ट्रे जो पड़ी होती थी उस पर नजराना रखे, 2 आने रखे 4 आने रुपया जैसा हैसियत, फिर ये अंदर जावे मौला को मिले। 1-2 बरस चला, मौला कुछ 10-1 बरस के हुए, माँ को कहते हैं बीबी मैं तुझे एक बात बोलूँ। क्या है? ये खोजे लोग हैं ना, ये बड़े चालाक हैं, तू इनसे नजराना लेती है, पैसे लेती है, कयामत के दिन तेरी ताकत है इनको ये इसका इवज देने के लिए। चुप हो गई। मौला कहते हैं कि ये खोजे लोग हैं ना 1 रुपया लेके 1,25,000 मांगते हैं, तू 1 का 1,25,000 दे सकती है? मैं इमाम हूं, मैं दे सकता हूं और मैं दूंगा, ये काम तेरा नहीं है। तो माता को हटा दिया, बंद कर दिया। तो ये व्यापारी कौन है, 1 दे के 1,25,000 मांगते हैं। कुछ भी हम दुआ कराते हैं, दुआएं मांगते हैं। लाइन पाठ के ऊपर इधर उधर लाइन होती है, लाइन में लोग खड़े हैं, दुआ कराते हैं मेहमानी के पैसे, ये रूहानी के लिए, ये मुश्किल आसान के लिए, ये फलानी चीज के लिए। 6-6 वक्त हम पैसे देते हैं, दुआ कराते हैं, और इसलिए जुदे जुदे दुआ कराते हैं कि मुखी कमरिया हमको दुआएं देवे। और बाज आदमी क्या है कि खीसे में हाथ डालते हैं और अंदर टटोलते हैं कि ये 10 सेंट है कि 25 सेंट है, 2 सेकंड लगा के फिर वो निकालते हैं, 2 दफा 3 दफा खीसे में हाथ डाल के करते हैं। और पीछे वाले खड़े हैं, एक एक आदमी एक एक दो दो मिनट लेता है। मैं अपनी आदत बताऊं, मैं जब भी लाइन में खड़ा होता हूं तो उस वक्त मैं नियत करता हूं, या मौला इसमें से 5 सेंट इसके जो मेरी नियत है। वो किसाब के हाथ में पैसे थे तो वो बंदों को निगार गत बख्शे शाहपीर बख्शे खाना बदान मामला खत्म। मुखी को कहने की जरूरत है कि मैं इतनी दुआएं लेता हूं? उसको हम कुछ नहीं कहते, मुखी को कह रहे हैं आप अपनी नियत बांध लो, फिर तोबा बंदों को निगार करके मुखी सिर्फ खाना बदान कहे ना मामला खत्म। जानने वाला वो है, वो मौला जो है वो हमारे दिलों में बैठा है, हमारी नियत करता है। तो माता को इसमें से निकाल दिया इसलिए कि ये व्यापारी लोग हैं वो जायफल ले लेते हैं। अब रही सुपारी, पीरासन कबीर जी कहते हैं सुपारी वो है कि जो नुकसान कारक है, सुपारी में कोई फायदा नहीं। एक तो खाने में भी सख्त है, दांत टूट जाए सुपारी न टूटे। हमारा जो मजहब है नियत के ऊपर है, नियत के ऊपर। मेहमानियां जारी थी, डायमंड जुबली का टाइम था और वो जमाना ऐसा था कि लाख आदमी बाहर से आए थे बॉम्बे में। डायमंड जुबली 1946 में बॉम्बे में हुई, लेकिन मौलाना आज़ाद इमाम 5 महीने पहले आ गए थे। एक आदमी की मेहमानी में बैठे, हाशम जी खुदा, कच्छ मांडवी का आदमी था हाशम भीम जी, मेरा बहुत दोस्त था, बड़ा अच्छा मोमन था। हाशम जी खुदा, तुमने मेहमानी काहे को रखी? हम हर 10 रोज तुम्हारी मेहमानी खाता है, आज 20 बरस से तुम्हारी मेहमानी खाता है। 20 बरस से हर 10 रोज वो मौला को मेहमानी करता है। कहते खुदावंद, रावण जुबली का टाइम है, माँ बाप ने बहुत आशीष दी कि बड़ी देर तक उसके पास बैठे भी रहे। जब मेहमानियां खत्म हो गई, मौला चले गए, मैं भागा हाशिम भाई के पास, बैठा, मुबारक दी। मैंने बोला हाशिम भाई, अब मेरे दिल के अंदर वो कैलकुलेटर शुरू हो गया, 140 रुपए मेहमानी के होते थे वो जमाने में। हर 10 रोज मेहमानी करे तो 44 रुपए हर महीने हाशिम भाई देवे और 20 बरस तक देवे, उसकी हालत नहीं थी। तो मैं बड़ा परेशान हुआ ये जानने के लिए। मौला कहता है कि हर 10 रोज तेरी मेहमानी खाता हूं और 20 बरस से खाता हूं। मैंने कहा हाशिम भाई 20 बरस से मेहमानी करते हो? कहते मिशनरी साहब मुझको खुद को मालूम नहीं कि कितने बरस हुए, लेकिन ये बात क्या है? मुझे कहता है ये मौला है ना, ये सच्चा मौला है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से मुझे रसीद देगा। 20 बरस पहले मेरा बाप गुजर गया, जियारत वगैरह हो गई, 10वां हो गया, मेरी माँ ने 20वां किया, 30वां किया, 40वां किया, अब खत्म होना चाहिए ना। लेकिन मेरी माँ ने बोला कि क्या जरूरत है बंद करने की, रूहानी के लिए नहीं, मौला के लिए। हर 10 रोज 10, 20, 30, 40 हो गए, अब 50, 60 वगैरह जो कुछ भी थे वो मौला की मेहमानी के लिए, रूहानी के लिए नहीं। घर में अच्छी तरह से पकावे और ले जावे, मौला की मेहमानी every 10 days। कहता कि आज 20 बरस के बाद मुझे रसीद मिली। अब हाशिम भाई एक मामूली आदमी, कच्छ मांडवी में रहने वाला, ये लंदन में रहने वाला बादशाह, इसको तो जाहिर भाने पता भी नहीं कि ये कौन है, लेकिन 20 बरस के बाद कहता है मैं दर 10 दोस्त तेरी मेहमानी खाता हूं। कैसा मौला है, इसको सब पता है। तो अपने दिल में सोचो मुझे क्या देना है, नियत करके एक ही वक्त मुखी कामड़िया के हाथ में पैसे दे के दुआ ले लो। और ये कोई लाजिम नहीं कि मुखी आपको 50 दुआएं देवे और कामड़िया 39 देता है तो मुखी के पास जाना और कामड़िया के पास नहीं जाना बेटा, ये बात मत करना। इसमें कोई छोटी बड़ाई नहीं है। मुखी कामड़िया हजर इमाम के राइट लेफ्ट हैंड है, उनके हुक्म से जो दूसरे दुआ के ऊपर बैठते हैं उनकी भी दुआ ऐसी ही है, क्योंकि अमर मुखी कामड़िया से मिला है। यहां बात नियत की है। फिर हसन कबीर दीन कहते हैं मैं इस सतगुरु के ऊपर कुर्बान हो जाऊं कि जिसने ये पंथ दिया, ये मजहब दिया। हमारे मजहब की हर बात में कुछ ना कुछ रूहानियत है, और इस रूहानियत की वजह से हमारे दिलों में हुब पैदा होती है कि मैं मौला का कुछ काम करूं, जमात को साफ खाने को साफ करूं, मैं जमात खाने में कोई चीज दूं, जमात खाने की और तरह से वॉलंटियर बन के किसी न किसी तरीके से मुखी कमड़िया प्रेसिडेंट वगैरह, ये सब खिदमत के रास्ते हैं। किसी की खिदमत छोटी है, किसी की बड़ी है। ये ओहदेदार, ये अमलदार, ये लीडर्स वगैरह अपना पैसा सरफ करते हैं, टाइम देते हैं, एनर्जी देते हैं, इनकी खिदमतें रूहानियत में फ़ायदा देती हैं। बैतुल ख्याल की रूहानियत में, बैतुल ख्याल की इबादत में जो ज़ाहरी खिदमत हम जमात की और मजहब की करते हैं, हमको सुबह बहुत सपोर्ट मिलती है। इबादत करो। और जो लोग हजर इमाम की खिदमत में हैं, मुखी कमड़िया प्रेसिडेंट अमलदारी वगैरह जो कुछ भी हैं, उनके ऊपर आम लोगों से इबादत करना ज़्यादा लाजिम है, क्योंकि वो लीडर है। और अमूमन ये होता है कि आदमी हर रोज जमात खाने आता है, लेकिन जब भी उसको कोई ओहदा मिलता है तो जमात खाना बंद। अरे भी क्या बात है, मीटिंग में था, हाजिर इमाम ने एक ताली का भेजा कि मैं ये चाहता हूं कि मेरे लीडर काउंसिलों के मेंबर्स वगैरह जमात खाने के टाइम में जमात खाने जाने और मीटिंगें न भरें। हमारा जो मजहब है रूहानियत पे टिका है, इमाम के फरमान पे टिका है। हमारी सारी जिंदगी हजर इमाम के फरमान में है। हम खाना खाते हैं मौला को याद करके, वो चीज़ खाते हैं कि जो उसने रजा दी है, हम उन चीज़ों को हाथ नहीं लगाते जो उसने मना किया है। हमारी जिंदगी में जब ये चीज़ आती है, हमारी सारी जिंदगी इमाम के फरमान में आती है, तो अंदर नूर पैदा होता है। सुखी और आबाद रहो। मौला आपके दिलों को नूर से भर दे, दिनों दुनिया की खुशियां और बरकतें देवे, आपको रूहानी ताकत देवे, हर आफत बला दूर करे, अच्छी तंदुरुस्ती देवे, कुटुंब कबीले में, फैमिली में, जमात में सलाह सब मोहब्बत इत्तेफाक देवे, मौला आपकी इज्जत आबरू को ज्यादा करे, आपस आपस के अंदर मौला मोहब्बत बढ़ाए, हजर इमाम अपने फरमान बरदारी में रखे, दसवंदी सुकृति बनाए, इबादत का शौक देवे, इबादत करने की ताकत देवे, इबादत को समझने की भी शक्ति देवे, आपकी दुआएं कबूल करें। सुखिया बात।